पक्ष विपक्ष में महिला आरक्षण विधेयक की जरूरत कितनी, यह कोई सगुफा तो नहीं। नमस्कार, ग्रीडी मोबाइल वाणी पर झारखंड से मैं सर्वेश तिवारी आपको लाया हूँ एक नए मुद्दे, एक नए चर्चा पर, जिसे आप ध्यान से सुने। महिला आरक्षण विधेयक हालांकि सरकार द्वारा पारित की जा चुकी है, लेकिन जहां आगामी 2024 में देश भर में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे समय में महिला आरक्षण विधेयक से देश भर की महिलाओं को कितना लाभ पहुंचेगा, हम उस पर बात करते हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण का जो फॉर्मूला बनाया गया है, उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। फायदे और नुकसान का सवाल महिलाओं के भी है और उनके चुनाव क्षेत्र के लिए भी है। ध्यान रहे, महिला आरक्षण की व्यवस्था रोटेशन के आधार पर होगी, यानी एक बार जो क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित होगा वह दूसरी बार नहीं होगा। सोच ले कि ऐसे में कौन सांसद उस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देगा, अगर उन्हें खुद पता हो उस सांसद को कि अगली बार उसको इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना है या जीतने के बाद दूसरी सीट की तलाश ही रख ली है, तो अब वह दूसरी सीट की तलाश में लग जाएगा और अपने क्षेत्र की अनदेखी करेगा। सांसद चाहे महिला हो या पुरुष, क्षेत्र को लेकर उसका व्यवहार ऐसा ही होगा, तो लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो सकती है। अब यहाँ बात करेंगे कि इस विधेयक से जहाँ महिलाओं को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, हाँ यह जरूर होगा कि उनको आरक्षण की वजह से 33% सीटें मिल जाएगी, जो संख्या के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इससे महिला नेता बनने और देश समाज का नेतृत्व करने की क्षमता में बढ़ोतरी की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गुंजाइश भी बहुत ही कम रहेगी, जैसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में होता है। इन समुदाय के नेता SC और ST के लिए आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं। अपवाद के तौर पर देख ले कि सुशील सिंधे जैसे एकाध नाम ध्यान में आते हैं जो सामान्य सीट से लड़ते थे, अन्यथा बाबू जगजीवन राम बिहार के, उनसे लेकर रामविलास पासवान तक की बात करें तो सारे दलित नेता आरक्षित सीट से ही लड़ते रहे हैं और चुनाव जीतते रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव इन्होंने जीता है, इसलिए उनकी संख्या आरक्षित सीटों से ज्यादा नहीं ही हो पाती है। महिलाओं के साथ भी यही होगा, लेकिन अगर आरक्षण की बजाय पार्टियां अपनी मर्जी से 33% महिलाओं को टिकट दे दे तो लोकसभा और विधानसभाओं में उनकी संख्या 33% से भी ज्यादा हो सकती है। अब बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विधेयक को लाने और पारित करने की। हम सबको ज्ञात है पंचायतों में महिला आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही लागू है, जहां रोटेशनल आधार पर ही आरक्षण की सुविधा की गई है। हम यहां जाति आधारित आरक्षण की बात नहीं कर रहे, किंतु विपक्ष द्वारा अब OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं के पक्ष में की जा रही मांग को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। यह सत्य है कि देश भर में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है, जिससे महानगरों और शहरों में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराध का प्रवेश अब गांवों में हो गया है। इस पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाओं की उपेक्षा लंबे समय से की जाती रही है, वर्तमान आधुनिक युग में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमने कोई बहुत बड़ा कार्य करने में सफलता नहीं पाई है, जिससे घरों की चार दीवारी से लेकर सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन के साधनों में, यात्रा के क्रम में, नौकरी, व्यवसाय, सेवा आदि क्षेत्र में महिलाओं को प्रताड़ना, हिंसा, अनैतिकता के वाक्यों से दो चार होना पड़ता है। इस बात पर भी गौर करना लाजिमी है कि आज ग्लोबल मार्केटिंग के युग में वैश्विक कंपनियों ने अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक महिला चेहरों को ही सहारा लिया है, जिससे व्यावसायिक उत्पाद की तरह आज भी महिलाओं को प्रोडक्ट की तरह देखे जाने के मामले सामने आते रहे हैं। यहाँ पौराणिक सांस्कृतिक अवस्थाओं की बात नहीं करते हुए अब गौर इस पर करते हैं कि क्या चुनाव के पहले महिला आरक्षण विधेयक लाकर सरकार ने कोई नया सगुफा तो नहीं छोड़ दिया, ताकि देश के बड़े बड़े गंभीर मुद्दे धाराशायी हो जाए और इस बार 2024 में 140 करोड़ की जनता के विरुद्ध लोकतांत्रिक चुनाव की नैया पार की जा सके। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष इन बातों पर गौर कर रहा है और आवाज उठने लगी है। भला सच्चाई को कब तक पर्दे में रखा जा सकता है। नमस्कार।